ओम शांति। मुरली है 23 दिसंबर 1993। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले परम पवित्र बाप दादा बोले। आज ऊंचते ऊंच बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता को धारण किया, पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है, इसलिए भक्ति में भी व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई, सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना? तो बाबा ऊंचते ऊंच बाप किसको देख रहा है? सर्व महान बच्चों को देख रहा है। सर्व महान क्यों बने? क्योंकि एक ऐसे व्रत को धारण किया जिसको संसार की आत्माएं असंभव समझती है। तो महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया। इस व्रत को सभी ने पवित्र प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। और भक्ति में भी गायन है व्रत लेने का और व्रत रखने का। कुछ व्रत होते हैं वो नित्य व्रत, जो कि सदा ही व्रत रखे जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, पवित्र रहना, किसी की निंदा न करना, कुवचन मुख से न बोलना, ये नित्य व्रत है। कुछ व्रत होते हैं वो नैमित्तिक व्रत होते हैं, पातक पाप होने के बाद पश्चाताप के रूप में किए जाने वाले जो व्रत है वो नैमित्तिक व्रत है। तीसरे व्रत होते हैं काम्य व्रत। काम्य व्रत अर्थात किसी कामना के पूर्ति के लिए किए जाने वाले व्रत, जैसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार के तीन व्रत गाये हैं भक्ति में। तो पवित्रता हमारा कौन सा व्रत है? नित्य व्रत, जो कि सदा ही रखा जाता है। तो व्रत लेना अर्थात संकल्प करना, व्रत लेना एक है, व्रत रखना। व्रत रखने में उपवास आ जाता है, व्रत रखा जाता है। और एक है व्रत लेना अर्थात संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना। तो व्रत रखने में खान पान चाहे चाल चलन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा, इन सभी व्रत का लक्ष्य है व्रत से वृत्ति को परिवर्तन करना। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? कि सभी आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड, भातृत्व का भाव, बंधुत्व का भाव। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, बुनियाद है, नींव है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल उड़ोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी-कभी बच्चे जब बाप से रोरियान करते अपना सच्चा चाट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतींद्रिय सुख, जितना जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान, अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते हो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर शक्तियां कहाँ चली जाती है? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं जीवनधारी। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना करते हो ना, पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही अर्थात पवित्र आत्मा, और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा यह फाउंडेशन ही पक्का है या हिलता है? अगर फाउंडेशन अचल अडोल है तो ही ब्राह्मण जीवन में सुख का अनुभव होगा। अगर पवित्रता में ही हलचल है तो सुख का अनुभव नहीं होगा, फिर जितना और उतना आ जाएगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर है पर सदा नहीं है। बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। और हम सब ब्राह्मण जीवनधारी है, केवल नामधारी नहीं है, संपूर्ण जीवन में ही पवित्रता है। तो जीवन है ये ब्राह्मण। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतींद्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण अतींद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, पवित्रता अलग और ब्रह्मचर्य अलग, परंतु ब्रह्मचर्य तो एक प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप है पवित्रता की। पवित्रता मंजिल है, पवित्रता अर्थात संपूर्ण पावनता, संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण सुचिता, संपूर्ण शुद्धि। तो और ब्रह्मचर्य का संबंध काम से है, इंद्रिय निग्रह भी ब्रह्मचर्य है। पहले भी सुनाया है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य भी है, ब्रह्मा की जो चर्या है उसका पालन करना भी ब्रह्मचर्य है। तो पवित्रता तो बहुत ऊंची बात है, परंतु ब्रह्मचर्य ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्माएं कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया और सहज पालन किया, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कोई कम बात नहीं है। बाप दादा जिन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया उनके लिए बाप दादा क्या कहते हैं? जिन्होंने इस व्रत को धारण कर लिया उनको बाप दादा की तरफ से बाबा कहते हैं। इस बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं, जिन्होंने और कुछ नहीं किया केवल ब्रह्मचर्य को पालन किया, ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया, उनको भगवान की तरफ से परमात्मा की तरफ से क्या मिल रही है? दुआएं, केवल ब्रह्मचर्य पालन करने मात्र से। इतनी ब्रह्मचर्य की अगाध महिमा है। लेकिन बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं, संपूर्ण और संपन्न, संपन्न अर्थात भरपूर, भरा हुआ, फुल और परफेक्ट संपन्न। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। तो पवित्रता का एक मुख्य अंग है ब्रह्मचर्य, परंतु छोटा सा भाग है वो, परंतु उसके बिना पवित्रता पूर्ण है, हो नहीं सकती, वो इतना महत्वपूर्ण भाग है, परंतु फिर भी वो छोटा ही हिस्सा है, क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। पवित्रता अर्थात संपूर्ण पवित्रता, जिसमें केवल काम नहीं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सारे विकार, जिसमें केवल एक इंद्रिय नहीं, सर्व इंद्रियों का निग्रह, वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य है, संपूर्ण। और जैसे ये ब्रह्मचर्य है काम से संबंधित, उसी तरह फिर संकल्पों में व्यर्थ संकल्प भी ब्रह्मचर्य, पवित्रता नहीं है। संकल्प, बोल और कर्म, उसमें भी शुद्धि, उसमें भी पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, संकल्प स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं, यह है संपूर्ण पवित्रता। अगर आपको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना, सब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? जितना चाहिए उतना अनुभव नहीं है, जितना अतीन्द्रिय सुख अनुभव होना चाहिए उतना नहीं है, जितना सुख होना चाहिए उतना नहीं है, जितनी शक्ति का अनुभव होना चाहिए उतना नहीं है। सुख और शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्रता में कमी है। सुख का अनुभव कम है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कम है, तो समझ लेना पवित्रता कमजोर है। कमजोरी का अनुभव है, शक्तियों की कमी का अनुभव है, तो समझ लेना पवित्रता की कमी है। मन उदास हो जाता है, बार बार रोना आता है, तो समझना पवित्रता की कमी है। मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, तो पवित्रता की कमी है, क्योंकि फाउंडेशन पवित्रता है। अगर पवित्रता को मजबूत कर दिया जाए तो बाकी सब सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं उतना जितना ये शब्द क्यों? पवित्रता जननी है, सुख और शांति उसकी गोद में खेलते हैं, उसके बच्चे हैं। कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है, बाबा पूछ रहे हैं। प्रतिज्ञा, पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। वो कौन सी अपवित्रता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो कि मन में हलचल उत्पन्न कर रही है? क्या हो रहा है जिसमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि पवित्रता हिल रही है? कौन सी वो बातें हैं? हो सकता है बार बार देह की तरफ दृष्टि जा रही है, चलते फिरते बार बार यह अनुभव हो रहा है, यह स्त्री, यह पुरुष, ये सुंदर ये असुंदर, ये काला ये गोरा, ये रूपवान ये कुरूप, देह की तरफ दृष्टि बार बार जा रही है, सहज अनायास भी अपवित्रता को जन्म देगी। क्या चेकिंग करने को कहा बाबा ने? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? ऐसी वो कौन सी बात है जो कि सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है उससे? ऐसा हम क्या कर रहे हैं? कहीं किसी में लगाव तो नहीं है? कहीं किसी के मैसेज का इंतजार तो नहीं है? कहीं किसी के फोन का इंतजार तो नहीं है? कहीं किसी के ईमेल का इंतजार तो नहीं है? कहीं किसी के व्हाट्सएप का इंतजार तो नहीं है कि जिससे मन इंतजार में है कि वो करे, वो बात करे? इंतजार वो भी सूक्ष्म मोह है, सूक्ष्म लगाव झुकाव है, सूक्ष्म आसक्ति अटैचमेंट है कि वो कुछ कहे, उधर से कुछ आए, इंतजार है देहधारियों का। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस प्रकार की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। वो क्या है जो मन में तूफान उत्पन्न कर रही है? देख तो न्यूज रहे हैं परंतु बीच में विज्ञापन भी आ रहे हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। वो 3D है, चलता फिरता है, मानस पटल पर उसका जो प्रभाव पड़ता है वो गहरा होता है। कोई नॉवेल अगर पढ़ी तो वो भूल जाएगी, परंतु कुछ देख लिया वो नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका प्रभाव इंद्रिया ज्यादा उपयोग में आ रही है। सारी इंद्रिया जहां पर प्रयोग में आती है वहां पर स्मृति बढ़ जाती है। आंखों से देख भी रहे, सुन भी रहे, तो उसका प्रभाव गहरा है। क्या हमने देखा जिससे मन में हलचल उत्पन्न की? चल रहे हैं, कुछ पोस्टर दिखा, कोई उपन्यास, कोई चित्र, कोई मैगजीन, कोई चित्र दिखा। चित्र में है क्या? रंग फेंके हुए है कागज पर बस, परंतु सम्मोहित कर देते, पागल कर देते व्यक्ति को, उसके स्वप्न में समा जाता है वो। कागज पर लकीरें खींची हुई है मात्र, परंतु विक्षिप्त कर देता है मनुष्य के मन को, सम्मोहन में ला देता है। ऐसी क्या मोहिनी है उसमें? वैराग्य की दो परिभाषा है। वैराग्य को अगर परिभाषित करना है तो दो शब्दों में हो सकता है। केवल एक, संसार को असार समझना, दूसरा देह को मिट्टी समझना। संसार को असार समझना और देह को मिट्टी समझना अर्थात ही संपूर्ण वैराग है। यह देह मिट्टी है, देह से भी ममत्व नहीं, अपनी ही देह से नहीं तो दूसरों की देह से कहां से? क्या मन में उत्पन्न हो रहा है कि दृष्टि वहां वहां जा रही है? क्या ऐसा आकर्षण है उसमें? शायद देह के विक्षिप्त और सम्मोहित रूप को हम देख रहे हैं, देह का जो वास्तविक रूप है उसे नहीं देख रहे हैं। देह का वास्तविक रूप क्या है? देह का वास्तविक रूप यह है कि वो हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मल मूत्र से भरा है, ऊपर से एक पॉलिथीन है बस, सुंदर पॉलिथीन लगाई रखी है, लगा के रखी है, जिससे अंदर का माल दिखाई नहीं पड़ता है, पर अंदर वही है जो गटर में है। अंदर वही है जो कि पिकदान में होता है, जो कूड़ेदान में होता है, परंतु वो उसे ऐसा प्रभावित करता है, ऐसा सम्मोहित करता है कि उसकी नींद उड़ जाती है। उसे वो प्रेम की संज्ञा देता है, मनुष्य उसे प्रेम की संज्ञा देता है, अपनी काम वासना को मित्रता की संज्ञा देता है। अपने हृदय में उत्पन्न यौनाकर्षण को अच्छे अच्छे शब्दों फ्रेंडशिप कहता है, परंतु है काम, अतृप्त रहती है आत्मा उससे, कभी तृप्त नहीं हो सकती। कितना भी अगर उसको भोग कर तृप्ति हो जाए तो भी ठीक, परंतु तृप्त कभी हो ही नहीं सकता व्यक्ति। ऐसी ये माया है। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। क्या कर दिया दिन भर कि जिससे हलचल हो गई? क्या देख लिया दिन भर कि जिससे योग समाप्त हो गया? क्या सुन लिया कि जिससे अब इस देह से उड़ जाना मुश्किल हो रहा है? बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, कितनी बार बताएंगे एक ही बात, आया तब से बस एक ही चीज कह रहा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, एक ही गीत है उसका, पवित्र बनो पवित्र बनो। क्या पवित्रता को समझा है? पर हमने सुनाते भी रहते हो, सुन भी लिया है और सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है ये है, पता तो है ये है ये है ये है, परंतु फिर भी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे जबरदस्त बंधन है अपवित्रता के, देह के बंधन है ये सब। ऐसी पवित्रता के लिए एक जबरदस्त वैराग की आवश्यकता है, छोटे मोटे वैराग से नहीं होगा, बहुत जबरदस्त वैराग की। केवल वस्त्र बदलने से वैरागी नहीं हो जाता है कोई, वो सन्यासी वो साधु भी वस्त्र बदलते हैं, साधु बन जाते हैं सन्यासी बदल जाते हैं, फिर भी भिक्षा मांगने के लिए जब खड़े रहते हैं तो उनके मन में भी होता है कि पहले मुझे भिक्षा मिले, मेरा नंबर पहले आए। इस माया से मुक्त नहीं हो पाते हो। जो अपने शरीर में राख लगाते हैं वो भी एक छोटा सा आईना रखते हैं, राख ठीक लगी है नहीं देखने के लिए। जो गुफाओं में रहते हैं उन्हें भी अपनी गुफाओं से मोह होता है, संसार को छोड़ दिया सब कुछ त्याग कर दिया परंतु उस गुफा से मोह है जिसमें तपस्या कर रहे हैं, उस कमंडलू से मोह है, उस मोह से छूट नहीं पा रहे हैं। संसार भूल भुलैया एक, इसमें कितना भी कोई प्रयत्न करे फिर भी उसमें फंसता ही जाता है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, कुछ भी करे माया नए नए रूप धारण करके हर दिन आती है। परंतु जो सच्चा वैरागी है, ऐसे उदाहरण भी है संसार में जो संपूर्ण वैरागी, जैसे एक साधु के लिए कहते हैं कि 22 साल तक तपस्या की हिमालय की किसी गुफा में और फिर आया संसार में, भक्तों से मिला तो भक्तों ने कहा आपने जहां तपस्या की वो जगह हमें दिखाओ, हमें ले चलो, हमें भी वहां पर बैठकर तपस्या करनी है। उसने कहा जिस गुफा में मैंने तपस्या की अब मुझे पता नहीं वहां कौन होगा। तो बोलते क्या बात कर रहे हो, आपने जहां 22 साल तपस्या की अब उसकी क्या हालत है, आपको उसके बारे में पता नहीं, और कौन होगा वहां। वो कहता है कि मैं जब वहां गया तो वो गुफा खाली थी और मैं छोड़कर आया तो खाली छोड़कर आया है, गुफा किसी की संपत्ति नहीं होती है तो मुझे नहीं पता अभी वहां कोई दूसरा होगा तो। कितनी अनासक्त वृत्ति है, तो आत्मा सब कुछ छोड़ के आ जाती है पर ये मेरा कमरा और ये मेरी चीज, ये कल सुना है ना कार्य साधन सुविधाएं, ये सब में आत्मा फंसती है और वो फंस गई है उसको ही पता नहीं चलता है। वो तो बहुत ऊंची उड़ान जब भरे आत्मा तो नीचे देखे तो पता चले सारे बंधन ही बंधन है, जो कुछ है सब बंधन है, जिसे हम कह रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है वो भी वास्तव में बंधन ही है। हम जिसे कह रहे कि ये संबंध बहुत जरूरी है, ये संबंध मेरी उन्नति के लिए जरूरी है, बाबा ने तो यहां तक के लिए कहा है किसी को भाई भी नहीं बनाओ किसी को बहन भी नहीं बनाओ, अव्यक्त महावाक्य है, किसी को ना भाई बनाओ ना किसी को बहन बनाओ, जरूरी नहीं है, सर्व संबंध एक बाप, ये बहुत ऊंची अवस्था है उसके लिए भी, सर्व संबंध एक बाप उसके लिए, परंतु संसार के जो संबंध है उन्हें समाप्त करना ही होगा। वो बाप से सर्व संबंध हो या ना वो आगे की स्टेज है, पहले इसको समाप्त करो। और दूसरी बात ये भी है कि उससे अगर सर्व संबंध है तो ये सारे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, परंतु इन संबंधों को समाप्त करना, क्योंकि संबंध ही बीज है, हम मोह को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मोह तो केवल उसका एक परिणाम है उस संबंध का, उस संबंध की निष्पत्ति है परिणति है, परंतु मूल जो बीज है वो संबंध है। संसार की आत्माओं से संबंध जोड़ रखे हैं, ये मेरा ये है ये मेरा वो है, ज्ञान में, अज्ञान के नहीं, लौकिक की बात नहीं है, अलौकिक में, तो ये सारे संबंधों को समाप्त कर देना। ये जब खत्म होंगे तो स्वतः ही सर्व संबंध आत्मा के कहां जुड़ेंगे, फिर ऊपर जुड़ेंगे, तब तक नहीं। तो बाप दादा कहते हैं मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है। बाबा ने देखा कि नजर दौड़ाई और देखा विहंगम दृष्टि बर्ड आई व्यू कि बहुत ज्ञान है सबके पास, मेरे से भी अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं ये, पावरफुल वाणी है सबकी। योग की विधि के तो क्या बन गए? विधाता बन गए, योग की विधि के विधाता। ऐसा योग सिखाते हैं कि उसके विधाता बन गए, जैसे इन्होंने जन्म दिया है इसको, योग को। जैसे राजयोग कि जन्मदाता ये है। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, धारणा के एक एक सब्जेक्ट पर एक एक घंटा भाषण कर सकते हैं। और सेवा में तो एक दो से आगे है। ऐसा वाक्य शायद ही संसार में किसी हिंदी के साहित्य में, एक दो से आगे रहने, कौन आगे है समझ में नहीं आ रहा है। हर एक एक दो से आगे है, हर एक दो से आगे है। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, बाकी क्या? ज्ञाता तो नंबर वन हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले मत बन जाते हैं, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने देखने बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। ये नहीं कर सकते, एक बार व्यर्थ संकल्प आ गया कि उसे रोकना बहुत मुश्किल है। वो चालू ही है, 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 उसको रोके कैसे? उसका प्रभाव कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप अविरत चलता ही रहता है। समझते भी हो कि यह कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। पता है ये हो रहा है, इसके वजह से मेरा योग कम हो रहा है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, परंतु उससे छूट नहीं पाती आत्मा। ऐसे वो व्यर्थ संकल्प उसको जकड़ लेते हैं। ऑक्टोपस ग्रिप होता है, ऑक्टोपस नाम का एक जानवर होता है, आठ उसके ये होते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाव या हाथ को, तो वो ग्रिप ऐसे पकड़ लेता है, ऑक्टोपस पकड़ लेता है, पूरी तरह से जकड़ लेती है आत्मा को। आत्मा चाहती है, कल की मुरली में था ना, रावण ने तुम्हारे पंख काट दिए है। कल की मुरली का लास्ट पैराग्राफ, रावण ने तुम्हारे पंख काट दिए, पतित आत्मा उड़ नहीं सकती। जैसे जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने, गिर गया था बेचारा, वैसे रावण ने हमारे पंख काट दिए, ज्ञान के और योग के, हिम्मत और उल्लास, उमंग और उत्साह के। आत्मा गिर गई, तड़प रही है, उड़ नहीं सकती है, चाहती है उड़ना पर नहीं उड़ पा रही है। तो समझते भी है कि यह कमजोरी है, इतना ज्ञान तो हो चुका है, डायग्नोसिस कर रहे हैं कि ये है, पर अभी इलाज वो नहीं समझ में आ रहा है। शक्ति स्वरूप में बनने में वह बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है, फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, जो चल रहा है उसको पूर्ण विराम दे देना, ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है फिर? ठीक है, समझते हैं, हाँ समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो होशियार किसमें है? फुल स्टॉप लगाने में नहीं, कॉमा लगाने में, ये आश्चर्य की निशानी लगाने में, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने में, उसमें होशियार है। ऐसे होने चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यू लगा देते हो, क्यू की क्यू लगा देते हो, फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन अंदर में संकल्प है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, परंतु माया स्क्रीन द्वारा क्या करती है? स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। व्यक्ति और बातें दो चीजें हैं इस ज्ञान मार्ग में, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? व्यक्ति और बातें, दोनों तरफ से, पॉजिटिव और निगेटिव। व्यक्तियों के प्रति एक तो घृणा या बातों के प्रति पश्चाताप, और दूसरी तरफ मोह, आसक्ति या बातों के प्रभाव में आ जाना, जो अच्छी बातें उनके भी प्रभाव में आ जाना। स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है, उसे कुछ भी प्रभावित नहीं करता है, अच्छा बुरा सबसे परे होता है, सबसे ऊपर। ये जो सतोगुण है इससे भी ऊपर निकल जाना है हमको, जैसे वो दिखाते हैं कि एक रास्ते से एक राहगीर जा रहा है जंगल से, उसे तीन डाकुओं ने पकड़ लिया। पहले ने उसे बहुत मारा, दूसरे ने उसे बंदी बना लिया, झाड़ से बांध दिया रस्सी से। तीसरा जो डाकू था, वो डाकू था, उसको दया आ गई, पर उसने उसे छुड़वा दिया और कहा कि तुम जाओ, वो रास्ता है। छोड़ने दिया अपने घर तक, खाली कहा कि वो रास्ता, इससे तुम चले जाओ तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। पहला जो डाकू है वो तमोगुण है, दूसरा जो डाकू है वो रजोगुण है, और तीसरा जो डाकू है वो सतोगुण है। वो भी डाकू ही है, वो केवल तुमको छुड़ा रहा है, पर तुम्हारी मंजिल मंजिल केवल सतोगुण नहीं, सतो प्रधान बनना है, सतो को भी अतिक्रमण कर निकल जाना है आगे। तो ये तीनों ही गुण है, गुणातीत, उससे भी परे। ये अच्छाई जो है उसमें भी नहीं फंसना है, उससे भी ऊपर निकल जाना है। ये सोने की क्या कहते धागे, जो जीवन बंध के धागे है, बाबा ने संडे में कहा, संडे के मुरली में कहा था ना। तो माया ऐसा स्क्रीन लाती है कि जिसमें बाप की बजाय कौन दिखने लगता है, आत्माएं और बातें। तो हमारी स्मृति में ये जो बिंदी लगाना है, इसके लिए भी पावर चाहिए कि मैं आत्मा और वो आत्मा, परंतु जब बातें और व्यक्ति आ जाते हैं तो ये नहीं हो पाता। तो उसका भी बीज, जैसे कहा ना उस दिन वरदान में, संबंध है, सर्व संबंध एक की तरफ कर दो तो दो ना मोह रहेगा और ना ही बंधन रहेगा। तो ये जो बिंदी है वो स्वतः ही लग जाएगी, ये जो पवित्रता की धारणा है वो स्वतः ही आ जाएगी। जो ये सोच रहे हैं कि पता है क्या है, परंतु उसको परिवर्तन नहीं कर सक रहे, उतनी पावर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। आगे का कल पढ़ेंगे। तो बाबा पवित्रता के बारे में कह रहे हैं, इसको एक व्रत के रूप में धारण करो। जब कोई व्रत लिया जाता है तो बहुत सारी चीजों का पालन किया जाता है। जब कोई व्रत लेते हैं, कोई भी व्रत ले लो, तो उसमें उस स्थान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, अल्पाहार किया जाता है, कम से कम आहार, जिससे कि मन शुद्ध रहे और एकाग्रता शून्य रहे, इधर उधर बुद्धि न भटके, बहुत सारी चीजों का पालन किया जाता है। तो हमारा तो ये नित्य व्रत है, ये नैमित्तिक व्रत भी है एक रीति से, क्योंकि पाप इतने किए इसके लिए व्रत को धारण किया है, पश्चाताप के रूप में भी नित्य व्रत है, नैमित्तिक व्रत भी है, और काम्य व्रत भी है, क्योंकि कामना है वहां जाने की। तो एक रीति से ये भी है ना। तो परंतु ये हमारा नित्य व्रत है, ये हमारा स्वभाव है। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता तुम्हारे जीवन का फाउंडेशन है, अगर पवित्रता है तो सुख शांति है। ये हम दूसरों को तो कहते हैं, अभी आप स्वयं को कहो कि मेरे जीवन में अगर सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन, पवित्रता का पिलर कमजोर है। हम राजयोग में चार पिलर दिखाते हैं ना, उसमें से एक पिलर है पवित्रता का, बाकी जो तीन पिलर है वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी वो पिलर अगर निकाल लिए जाए तो भी वो राजयोग थोड़ा बहुत रहेगा, परंतु अगर पवित्रता को वहां से निकाल लिया जाए तो ताश की पत्तों की तरह वो राजयोग की जो इमारत है वो गिर जाएगी, इतना उसका महत्व है। अच्छा, ओम शांति।